जब सत्संग या प्रार्थना में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि चित्त निर्मल हो गया है, और जब अपने से व्यवहार करते समय कोई बुराई अब अपने से व्यवहार करते समय कोई बुराई न होगी, परंतु जब व्यवहार में जाते हैं तो फिर कोई न कोई बुराई हो जाती है, उससे बहुत पश्चाताप भी होता है। परंतु यह सत्संग पश्चाताप और प्रार्थना भी बुराई रहित जीवन में बुराई रहित जीवन नहीं दे सके। पूर्णतः बुराई रहित जीवन के लिए और क्या साधन करना चाहिए, इसमें एक बड़ा रहस्य ये है कि सत्संग पश्चाताप और प्रार्थना मनुष्य को बुराई रहित न बना सके, यह बात बिल्कुल गलत है, भ्रमात्मक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको लगता होगा प्रश्नकर्ता भाई को ऐसा लगता होगा, लेकिन उसके भीतर रहस्य क्या है कि जिस बुराई को आप विचार से छोड़ना चाहते हैं उस बुराई में कहीं न कहीं कोई तात्कालिक सुख आपका फंसा होगा जरूर। बुराई को बुराई जानकर उसका त्याग कर देना यह तो विचारक जन का सहज स्वभाव होता है, लेकिन दो हिस्से हो गए व्यक्तित्व के, विचार के आधार पर आप बुराई छोड़ना चाहते हैं लेकिन जीवन में उस बुराई जनित सुख की आसक्ति शेष रह गई है तो दुहरा करके आ जाती है। दूसरी बात क्या है कि आपके प्रयास से जीवन की कुछ बुराइयां तो चली गई हैं, अब थोड़ी मोटी जो रह गई हैं उसको आप सहन कर सकते हैं इसलिए वे दोहरा के आती हैं, सहन नहीं कर सकते होते तो नहीं आती। आप कहते हैं कि सत्संग से भी ये काम नहीं हुआ, पश्चाताप से भी काम नहीं हुआ, प्रार्थना से भी काम नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ये कहना तो आपका मैं मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मैं मानूंगी कि सत्संग पश्चाताप और प्रार्थना सब फेल कर गए, ऐसा मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानूंगी? मुझे मालूम है मानव जीवन का यह मंगलमय विधान है कि जिस बात को अपने में आप नहीं रखना चाहेंगे वो कभी ठहर नहीं सकता। तो आपके केस में क्या हुआ होगा? तो आपके केस में या तो ये हुआ है कि पश्चाताप भी सजीव नहीं है, प्रार्थना भी सजीव नहीं है, आपने सुन लिया है, सुनने के आधार पर ऐसा आप कर रहे होंगे लेकिन इसमें सजीवता नहीं होगी। तो दोनों बातें खत्म करिए, किसी भी प्रकार की बुराई से जो तात्कालिक सुख मिलता है उसको आप निकालिए जीवन में से, बुरा परिणाम पीछे आता है और सुखद परिणाम पहले आता है। जैसे किसी रोगी आदमी का लीवर खराब हो गया हो और उसको तली भुनी हुई चीजें खाने के लिए मना किया गया हो तो खाते समय स्वाद का सुख पहले आ गया और डायरिया का दुख पीछे आया, ठीक है ना? तो बुराई जीवन में ठहरती है इसलिए कि बुराई का तात्कालिक सुख आदमी पसंद करता है, कालांतर में जो दुख आएगा उस पर दृष्टि नहीं रहती है, अन्यथा बुराई ठहर नहीं सकती। तो एक तो मेरे भाई को ये उपाय करना चाहिए कि उसके तात्कालिक सुख को मत देखो, कालांतर में आने वाले घोर अंधकार और दुख को देखो, और दूसरी बात ये है कि पश्चाताप ऐसे जानबूझ करके किया जाता हो तो संभव नहीं है। अगर निर्भूल जीवन की आवश्यकता है तो अपनी बुराई को देख करके ही हृदय में बड़ी गहरी वेदना पैदा हो जानी चाहिए, और हृदय में गहरी वेदना ही आस्तिक प्राणी की प्रार्थना है। जिसकी आवश्यकता आप अनुभव करते हैं उसी का नाम प्रार्थना है। तो आप शब्दों में प्रार्थना कर रहे होंगे, सचेत होकर सुना रहे होंगे, हृदय में गहरी पीड़ा पैदा नहीं हुई होगी। अन्यथा मैंने सुना है, अनेक आपने भी सुना होगा, बहुत से उदाहरण हम लोगों को मालूम है, इसी वृंदावन की बात है, कोई एक महिला कमला जी उनका नाम था गलत रास्ते पर थी, तो किसी खास तिथि पर, एकादशी के दिन की, भैया दूज के दिन की, अक्षय तृतीया के दिन, किसी खास तिथि पर मदन मोहन जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना चाहा, पंडा ने खूब जोर से उनको डांट दिया, कलंकिनी पापिनी आई है मंदिर में भगवान को जल चढ़ाने के लिए, निकल जा, तो मंदिर में घुसने के लायक नहीं है। निकल गई, पीछे चली गई मंदिर के पीछे, परिक्रमा में जहाँ पर प्रणाम किया जाता है ना पीठ की तरफ, वहाँ जा करके उन्होंने जल चढ़ाया, और केवल वो पात्र का जल ही नहीं चढ़ाया, आंसुओं का जल भी चढ़ाया। मदन मोहन जी, आज मेरा जीवन ऐसा हो गया, हम मंदिर में आपको जल अर्पित नहीं कर सकते, कह करके जल चढ़ा के आंसू चढ़ा के चली गई, घर पहुंची। मंदिर से घर जाते जाते वृत्ति उनकी पूरी बदल गई। जिस पुरुष के साथ रहती थी उनसे जाके उन्होंने कहा, देखिए जी, अब आज से मेरा आपका कोई संबंध नहीं है। जप करना पड़ा, संबंध तोड़ने का जाप करना पड़ा, नहीं, हृदय में ग्लानी हुई, अच्छा मेरा जीवन इतना पतित हो गया, इतना अधम हो गया, मदन मोहन जी को मैं जल चढ़ाने के लायक नहीं रही। इस पीड़ा ने उनके विवेक को जगा दिया, उनकी आसक्ति को तोड़ दिया, और उस पराये पुरुष के साथ जिसके साथ रह रही थी अपना घर छोड़ के, उसको जाके उन्होंने कहा कि देखिए जी, अब आपसे, आज से आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, अब मैं इस मकान में नहीं रहूंगी, कह करके और चली गई, दूसरी जगह जाकर के रहने लगी। प्रतिदिन प्रातःकाल जमुना जी में स्नान करना, लुटिया में जल लेना, और मंदिर के पीछे मदन मोहन जी का वो याद करके पीछे ही जल चढ़ाना, सामने अब जाती ही नहीं थी। स्वामी महाराज ने एक कथा सुनाई थी, एक साल बीत गया, हृदय के पश्चाताप ने, की हुई भूल को पुनः न दोहराने के व्रत ने, और मदन मोहन जी की शरणागति, उनकी महिमा, उनका उनकी याद कर, ऐसा महाराज जी कहते कि ऐसा लग रहा था कि एक साल कमला जी ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, और पीछे पीछे खड़े होकर के जल चढ़ाती रही मंदिर की पीठ पर, तो उनके हृदय की निर्मलता, उनका भाव, उनकी दीनता, उनकी शरणागति, ये सब मिल करके मदन मोहन जी स्वयं ही उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए, और उसी तिथि को, उसी व्रत के दिन वो एकदम धजरा के मंदिर में पहुंची, और जो उन्होंने समर्पण भाव से प्रणाम किया है मदन मोहन जी को, उनका प्राण उसी जगह लय हो गया। तो एक साल पहले जिसको कलंकनी कहकर निकाल दिया था, तो एक साल के भीतर ही वो सब खत्म हो गया, और जब उन्होंने जाकर के प्रणाम किया मदन मोहन जी को, हृदय छोड़कर उनसे मिलने गई, तो मदन मोहन जी ने उनको अपने में लय कर लिया। तो जय जयकार होने लगा, कमला जी की भक्ति का बखान होने लगा, और बड़ी धूमधाम से उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि पश्चाताप से हृदय की शुद्धि नहीं होती है, कि प्रार्थना से हृदय की शुद्धि नहीं होती है, कि कि सत्संग से मनुष्य के जीवन का अंधकार नहीं मिटता है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और जो भी भाई जिन्होंने ये प्रश्न लिखा है उनके भीतर निराशा नहीं आनी चाहिए, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग पश्चाताप और प्रार्थना से काम नहीं चला। उनको ऐसा सोचना चाहिए कि जानते अनजानते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं न कहीं मैंने बुराई को पसंद किया होगा, इसलिए बुराई रह गई है। और कहीं न कहीं मेरी प्रार्थना में पश्चाताप में कहीं न कहीं निर्जीवता रही होगी, विश्वास कम रहा होगा, इसलिए काम नहीं बन रहा है। तो अब आगे से उनको क्या करना चाहिए कि उनकी बुराई का जो तत्काल एक सूखा भास होता है उसका त्याग करना चाहिए, बुराई को ना पसंद करना चाहिए पूरी तरह से, और प्रार्थना से और पश्चाताप से और सत्संग से कभी हटना नहीं चाहिए। जहाँ पर आज है वहाँ पर तो वो डटे रहें और उसके आगे बढ़ने की चेष्टा में लगे रहें, उनकी जरूरत बढ़ती जाएगी, सामर्थ्य बढ़ जाएगी और जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा हो जाएगा। हर क्रिया के पीछे पवित्र भाव और भाव के पीछे ज्ञान रहना चाहिए। इसमें पहले भाव की समझ लगती है किंतु दूसरे भाव की समझ नहीं लगती है। अच्छा, खैर ये तो अपनी समझ की बात है, लेकिन प्रवृत्ति में भाव की पवित्रता और ज्ञान का प्रकाश हमेशा रहना ही चाहिए। ज्ञान का प्रकाश का क्या फल होगा? तो ज्ञान के प्रकाश का फल ये होगा कि जिस किसी साधक को अविनाशी जीवन चाहिए वो किए हुए कर्म के फल की आशा नहीं रखेगा। तो फल की आशा छोड़ना ये ज्ञान के प्रकाश का परिणाम है। क्यों? कि कर्म होता है, कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म का अंत होता है, ठीक है ना? सत्संग का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है तो बोलने का आरंभ हुआ है, सुनने का आरंभ हुआ है तो बोलने और सुनने का अंत भी होगा, जी? हाँ, तो जो जिसका आरंभ होता है जिसका अंत होता है उसका फल भी बनने और मिटने वाला होगा, क्रिया का फल जो बनेगा। इसलिए तो जो विवेकी जन होते हैं वो सही प्रवृत्ति में भाग लेते हैं लेकिन प्रवृत्ति का फल अपने लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका फल भी नाशवान होता है। ज्ञान का प्रकाश क्या करेगा कि जब हम कर्म क्षेत्र में हाथ डालेंगे, सर्वहितकारी काम करेंगे तो इस सावधानी के साथ करेंगे कि इस किए हुए कर्म का कोई फल मुझको नहीं चाहिए, रिवार्ड मुझको नहीं चाहिए, अभिमान अपने में नहीं रखेंगे। क्या किस उद्देश्य से कर्म करेंगे कि करने के राग की निवृत्ति हो जाएगी, तो ये तो ज्ञान का फल हुआ। और पवित्र भाव क्या है कि कर्म में भाव की पवित्रता का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है कि भाई जो भी कुछ कर्म हम करने जा रहे हैं उस कर्म के फल से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो हितकारी हम कितना बनेंगे वो तो परमात्मा के मंगलमय विधान से मिलेगा जितना उतना करेंगे, लेकिन हम अपनी ओर से मन से वचन से भाव से कर्म से किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, इस व्रत को धारण करना भाव को पवित्र बना देता है। तो होता क्या है, अपने सुख की धुन में लगा हुआ व्यक्ति दूसरों की तकलीफ का ध्यान नहीं रखता, अपने स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति दूसरों को क्षति पहुंचा के दुख दे करके भी सुख लेना पसंद करता है, तो इसमें वो फंस जाता है। और भाव की पवित्रता का अर्थ क्या है कि दुनिया की भलाई कर पाओगे कि नहीं वो तो भले छोड़ दो, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे किसी कर्म से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो ये इस सत्य को स्वीकार करने से कर्म में भाव पवित्र हो जाता है। अब मेरे भाई पूछ रहे हैं कि भाव की पवित्रता तो समझ में आती है और ज्ञान वाली बात समझ में नहीं आती, तो पहले और पीछे का प्रश्न नहीं है, समझ में आने न आने की बात नहीं है। आप जब काम करने जाते हैं तो बहुत ही स्पष्ट है कि जब दूसरा कोई मेरे साथ अहितकर कर्म करता है तो मुझे बुरा लगता है, और हमको दूसरे के साथ अहितकर कर्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक बात है, बड़ी बड़ी अच्छी ये है, बड़ी अच्छी बात है। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है उसमें से एक उदाहरण मुझे याद आ गया। स्वामी जी महाराज से एक बार ऐसी बातचीत मेरी हो रही थी, भाव की पवित्रता और विधि की शुद्धता, ठीक विधि से काम करना, पवित्र भाव से काम करना, तो महाराज जी ने बताया, मैंने अपना कोई उदाहरण दिया। हमने कहा कि महाराज इस काम में ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरा पक्का नहीं उतर रहा है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे ऊपर की बात बोल गए। और उन्होंने कहा कि देखो, साधक हो करके अगर कर्म करने में इतनी सावधानी नहीं रखी जाएगी कि ठीक विधि से पूरा करो, पवित्र भाव से पूरा करो और विवेक पूर्वक पूरा करो, तो ज्ञान का हिस्सा उसमें से हटा दो तब भी, और भाव की पवित्रता के हिस्सा हटा दो तब भी, या विधि की शुद्धता हटा दो तब भी, काम तो हो जाएगा उल्टा सीधा जैसा तैसा, लेकिन तुमको सबसे बड़ा घाटा ये लगेगा कि करने का राग नहीं मिटेगा। ये है उल्टा, अगर जो काम करना है उसको पवित्र भाव से नहीं करोगे, ज्ञान पूर्वक नहीं करोगे और ठीक विधि से नहीं करोगे, हमारी विधि गलत हो रही थी, तो विधि पर हमने ध्यान दिया था, महाराज जी से कहा इसको जैसे होना चाहिए वैसे हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, तो करें कि नहीं करें, ये नहीं कहा कि मत करो, ये नहीं कहा कि करो, ये कहने लगे कि देवकी जी एक बहुत बड़ा घाटा ये लगेगा कि इसमें से कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तुमने, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, करने का राग नहीं मिटेगा, तो बहुत बड़ा घाटा है। राग नहीं मिटेगा तो क्या होगा, राग नहीं मिटेगा तो बारंबार शरीर धारण करना पड़ेगा, ऐसा है। तो आगे पीछे की बात नहीं है, और किसको पहले ले और किसको पीछे ले, ऐसी कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कर्म के संबंध में कर्म विज्ञान के आधार पर तीनों ही बातें अच्छी तरह से निभानी पड़ेंगी, तभी राग की निवृत्ति होगी, तभी आप शांत हो सकेंगे, तभी आप देहातीत जीवन में प्रवेश पा सकेंगे। आत्मविकास अथवा आत्मज्ञान में शरीर की स्वस्थता एवं निरोगता का महत्व निर्विवाद है। मानव सेवा संघ शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि एवं निरोगता के लिए क्या मार्ग सुझाता है, कृपया प्रकाश डालें। इसलिए कि ये सब औजार जो अपने को मिले हैं संसार में रहने के लिए, शरीर मिला है, मन मिला है, चित्त मिला है, बुद्धि मिली है, ये सब साथी जो मिले हैं प्राकृतिक शक्तियों के अंश के रूप में, इनको इनकी स्वाभाविकता में रहने देना है, इनकी स्वाभाविकता में रहने देना है, मन को भी, चित्त को भी, बुद्धि को भी, शरीर को भी, सब शरीर ही है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब इनके अंग है अलग अलग, तो इनको स्वस्थ रखना अपना कर्तव्य है, इनको स्वाभाविक रहने देना अपना कर्तव्य है, और निरोग शरीर से सत्य पकड़ा जाएगा ऐसा सोचना भूल है। शरीर नाशवान है, नाशवान शरीर से अविनाशी जीवन नहीं मिलता है, नाशवान शरीर के माध्यम से अविनाशी तक पहुंचा नहीं जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है इसलिए कि यह एक प्राकृतिक यंत्र है, ये ठीक रहेगा तो संसार के काम आएगा। मन चित्त को ठीक रखना है, शुद्ध रखना है इसलिए कि ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये ठीक रहेंगी तो सेवा में सहायक होंगी। और अपने को तो सबसे असंग होना है, शरीर फूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, कारण शरीर से भी सबसे असंग होने के बाद ही अविनाशी जीवन से अभिन्नता होती है। अविनाशी का अविनाशी योग, अविनाशी का भोग, अविनाशी का प्रेम तीनों शरीरों से संबंध तोड़ने के बाद ही संभव होता है। तो मानव सेवा संघ शरीरों की स्वस्थता, निरोगता, संयम, सदाचार और हितकर श्रम, इस पर खूब जोर डालता है। किस लिए? इसलिए कि अगर शरीर के साथ जो करना चाहिए सो नहीं करोगे तो उससे संबंध तोड़ने में आपको कठिनाई होगी। शरीर स्वस्थ रहता है भोग प्रवृत्ति से कि संयम से? संयम से। तो जो भोग प्रवृत्ति में लग लग करके शरीर को रोगी कर देगा, आसक्ति में पराधीनता में बंध जाएगा, तो जो आसक्ति में बंधा है वो शरीर का संग छोड़ सकेगा? नहीं सकेगा। तो मानव सेवा संघ में शरीर की सेवा, मन की सेवा, चित्त की सेवा का ये अर्थ है। यह कहा जाता है कि जो हमारे मित्र अथवा संबंधी थे जिनका वियोग हो गया उनकी तो हमें याद आती है, परंतु जो प्रभु मौजूद है हमारे साथ हैं उनकी याद करनी पड़ती है। तो इसके इस संबंध में निवेदन है कि जो हमारे मित्र अथवा संबंधी थे और वह संबंध हमारे शरीर मन बुद्धि से था, जिस कारण उनकी याद आती रहती है, ये भी भ्रम है। परंतु प्रभु का संबंध, आप कहते हैं कि जिनको मैंने संबंधी माना उनका संबंध हमारे शरीर मन बुद्धि से था इसलिए उनकी याद आती है और इसीलिए संबंध बना हुआ है। तो आप ऐसा सोचिए कि बहुत घना संबंध आपने माना था और मन के प्रतिकूल होने से संबंध विच्छेद कर लिया, तो हाथ पांव तो बना ही हुआ है, शरीर आंख नाक कान तो बना ही हुआ है, लेकिन अब उस व्यक्ति की ओर देखना भी आप पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, विलग हो जाना चाहते हैं। तो शरीरों से संबंध था तो शरीरों के रहते रहते अलगाव कैसा हो गया? इसका अर्थ ये है कि संबंध माना था मैंने और तोड़ा मैंने, इसमें शरीर का नहीं। परंतु प्रभु का संबंध हमारे साथ कभी हुआ नहीं। आहा, विश्वास पथ की जड़ ही काट डाली मेरे भाई ने। अरे भैया, तुम्हारा नित्य संबंध और किसी से कभी हुआ ही नहीं। संबंध अगर है तो केवल उसी एक अनंत तत्व से है कि जिसमें से हम सब भाई बहनों को जीवन मिला है, मेन स्प्रिंग ऑफ लाइफ कहते हैं उसको, रिजर्वायर ऑफ लाइफ। ये सब जो एक एक छोटा 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 यूनिट दिखाई दे रहा है ना दृश्य जगत में, विविध रूपों में विविध प्राणी दिखाई दे रहे हैं, अलग 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 सब, इन सब का कौन सा मेन स्प्रिंग है, कौन सा रिजर्वायर है, कौन सा उद्गम है, किसमें से यह सब निकला है, उसी को न परमात्मा कहा जाता है। तो आपने तो सोर्स से ही कनेक्शन काट लिया, सांस कैसे लेंगे भाई? सत्ता ही नहीं रहेगी, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा,
तो यही भ्रम है कि उसी से मेरा संबंध हुआ नहीं। सच्ची बात यही है कि उसी से सदा सदा का संबंध है, उससे भिन्न और किसी से संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। और मानते हैं तो मानना मेरी भूल है, और इसी भूल का परिणाम है कि हाय हाय करके तड़प रहे हैं। तो जो सच्ची बात है उसको उलट दिया, जो झूठी बात है उसको पकड़ लिया, यही तो भ्रम है। इसी को मिटाने के लिए सत्संग है। प्रभु का संबंध हमारे साथ कभी हुआ नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया उससे संबंध तुम्हारा कभी टूटा नहीं। बड़ा भारी भ्रम है। केवल विश्वास ही विश्वास है, केवल सुना ही हुआ है, इसलिए उनकी याद करनी पड़ती है। तो जब संबंध हुआ ही नहीं, है ही नहीं, तो आप उसको याद करने का कष्ट काहे को करते हैं? अगर ऐसा मानते हैं कि उनसे संबंध हुआ ही नहीं, और ये विश्वास जो मैं कर रहा हूँ और दूसरों के मुख से सुन रहा हूँ, तो ये सुनी सुनाई बात है और ऐसे मिथ्या विश्वास है, तो फिर उसको याद करने का कष्ट क्यों करते हैं आप? याद करने की जरूरत क्यों अनुभव करते हैं? ये अपने आप में विरोध है ना। संबंध भी न मानो और याद करने की चेष्टा करो। अरे भाई काहे के लिए याद करो, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब बचपन में मैं भगवान से नाराज रहती थी, तो कोई कहता था कि भगवान बड़े कृपालु हैं, जगत पिता हैं, तो मैं सुना देती, गॉड इज नॉट काइंड फादर बट क्रूएल जज। और फिर जब कोई समझाता तो मैं कहती कि होंगे कृपालु जिसके लिए होंगे, उसके लिए मेरे लिए तो है नहीं, तो इसलिए हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात है कि जिससे जिसके संबंध को ही आप निराधार मानते हैं, जिसके विश्वास को ही आप निराधार मानते हैं, तो उसको याद करने की जरूरत क्या है भाई? छोड़ दो उसको, हमारे लिए हम उसको याद करेंगे, हम उससे प्यार करेंगे, हमें अच्छा लगता है, हमको सजीव लगता है। गलत बात है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि भगवत स्मृति जो है वो बिना विश्वास के सजीव हो सकेगी, नहीं होगी, कभी नहीं है। और निराधार क्षणों में मैं भाई को जानती हूँ, अच्छे समझदार और सोचने विचारने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने ऐसे बहस करने के लिए प्रश्न नहीं किया है। उनके दिल में ये तकलीफ है, हो नहीं रहा है उनसे, तो मैं उनकी सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ कि भाई आप इस मौलिक भूल को मिटाइए। ये जड़ में ही ये भूल है कि परमात्मा का संबंध केवल सुना सुना हुआ है, माना माना हुआ है नहीं। संबंध है, और जिस समय हम उसको नहीं मानते हैं उस समय भी वो संबंध रहता है। कैसे हो सकता है? आप बड़े विचारक हैं, तो विचार के आधार पर सोच करके देखिए तो आपको आपने स्वयं अपने द्वारा नहीं बनाया, और जिस धातु से आप बने हैं वह धातु संसार की किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं है। तो आप विचारक हैं, तो विचार की दृष्टि से सोचिए तो कोई उत्पत्ति बिना आधार के होती है जी? नहीं होती है। कोई प्रतीति बिना प्रकाशक के होती है? नहीं होती है। तो मत कहो भगवान उसको, लेकिन अपनी उत्पत्ति का आधार तो मानोगे जी? मानना पड़ेगा ना। तो मैं उत्पत्ति हूँ और मेरा आधार है और मेरा उससे संबंध नहीं है ये कहता बनेगा?
नहीं बनेगा, इसलिए ये प्रश्न गलत है।
एक भाई बड़े दुखी हो रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के विचारों के संपर्क में आया, सबसे जबरदस्त प्रेरणा उनके विचारों से लेता रहा हूँ, किंतु उनके जीवन काल में कभी भी उनके समीप में अपने आप को उपस्थित करने की आवश्यकता तथा प्रेरणा नहीं हुई। क्या कारण है कि उनके जीवन काल में यह इच्छा नहीं हुई और अब उनके शरीर शांत होने के पश्चात यह प्रायश्चित हो रहा है कि उनका करुणामय प्यार भरा हाथ अपने शरीर से स्पर्श नहीं कराया गया? तो कोई बात नहीं है, समय समय की बात है। पहले आपने आवश्यकता नहीं अनुभव किया तो ऐसा नहीं कराया, लेकिन ऐसा मानिए कि आपने नहीं कराया होगा, लेकिन उन्होंने किया है। उन्होंने अपने प्यार का जादू आप पर चला दिया जरूर शरीर के रहते रहते, अन्यथा अब आपको उसकी याद नहीं आती। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपके भीतर उनके प्यार भरे स्पर्श की आवश्यकता अनुभव होती है तो उनके लिए यह बात कठिन नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब जिस साधक को ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उनके प्यार के स्पर्श का अनुभव होता है। इसलिए आप मत सोचिए, संत अमर होते हैं, उनका नाश नहीं होता, उनके सत्य का नाश नहीं होता, उनके प्रेम का नाश नहीं होता। और जिस साधक को जिस समय जैसी आवश्यकता रहती है वे उसको देते हैं। इसलिए आप पछताइए मत। अब भी आपको उनके प्यार की आवश्यकता है तो जिस समय यह आवश्यकता तीव्र हो जाएगी, आप जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे उनके प्यार भरे कर स्पर्श को आप अनुभव कर सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे।